तो ये शिवरात्रि के लिए बाबा से मिलन करने के लिए ग्रुप आया है, है ना? तो इस ग्रुप की ये पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास में पांडव भवन के इस आंगन में मेडिटेशन हॉल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। और मैं जानना चाहूंगी आप कहाँ कहाँ से आए हैं? हाँ, अफ्रीका से कौन है? एक ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं। अमेरिका, कोई नहीं। यूके, अच्छा पूरा ग्रुप लगभग यूके का है, तो बाकी ग्रुप का है मॉरिशस। और भी कोई? हाँ, उधर गए हुए हैं। तो हॉलैंड, वो फर्स्ट टाइमर से काफी लोग। अच्छा अच्छा, सिंगल विदेशी है। कोई बात नहीं। तो बाबा का, तो बाबा कहते गुलदस्ता बनता ही है वैरायटी फूलों से, है ना? तो वैरायटी फूलों का, और बाबा को हमेशा इंटरनेशनल सभा पसंद आती है, है ना? तो आपके आने से इंटरनेशनल हो गई ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ, जिसके लिए आज की मुरली ही प्रेरणा रही कि बाबा ने आज की मुरली में शब्द यूज किया श्रेष्ठाचारी दुनिया और भ्रष्टाचारी दुनिया, है ना? और ये भी कहा धर्माउ युग। और बाबा कई मुरलियों में कहते रहते हैं, दुनिया में भी लोग बोलते रहते हैं, आजकल धर्म कर्म नाम की चीज कोई रह नहीं गई है। और जब हम ऐसा कहते हैं कि धर्म नाम की चीज नहीं रह गई है, कर्म नाम की चीज नहीं रह गई है, मतलब क्या? कि धर्म भ्रष्ट हुए हैं, कर्म भ्रष्ट हुए हैं। और वो क्यों हुए हैं? क्योंकि धर्म से श्रेष्ठता चली गई तो कर्मों से श्रेष्ठता चली गई। तो प्रकाश चला गया तो अंधकार तो आएगा ही अपने आप, है ना? तो श्रेष्ठता चली गई तो भ्रष्टता आ गई अपने आप, ऐसे ही होता है ना? तो आज हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये यही वो युग है जिसमें बाबा कहते 21 जन्मों की कमाई तो क्या, पूरे कर्म कल्प की कमाई करनी है। और इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। लेकिन कर्म श्रेष्ठ बनता है जब धर्म श्रेष्ठ होता है। और इसलिए पहले हम समझेंगे इन दोनों बातों को कि धर्म किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं। तो धर्म किसे कहते हैं? जनरली धर्म के नाम पर लोगों के बुद्धि में यही मान्यता भरी पड़ी है, हम हिंदू धर्म के हैं, हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म के हैं, हम पारसी धर्म के हैं, हम बौद्ध धर्म के, पता नहीं कितने सारे धर्म बने हुए, वो सारे देह के धर्म। और वो भी जब बने थे असल में, जो जिसको हम कहते क्रिश्चियन धर्म, वास्तव में उसका जो धर्म पिता था उसने आगे जीवन में धारणा क्या होनी चाहिए वो सिखाया, और उन्हीं का कलेक्शन बाद में एक पुस्तक का रूप लिया, और तब कहा कि हमारे धर्म का ये पुस्तक है। तो वास्तव में क्यों ऐसे धर्म पुस्तक या धर्म पिता कहा गया? क्योंकि वो धारणाएं देने आए जीवन के लिए। तो वो धारणा शब्द हमारे बुद्धि से निकल गया, सिर्फ रह गया ये हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म, सिख धर्म उसकी किताब है, ये उसके धर्म के पिता है, सिर्फ यहाँ तक हम सीमित रह गए, जिसको बाबा कहते हैं देह के धर्म। और बाबा संगम पर आकर एक ही शिक्षा देते हैं, बच्चों देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ मुझे एक पिता परमात्मा को याद कर। और इसका मतलब बाबा ने एक लाइन में कह दिया, वो जिसको धर्म मान के बैठे हो उससे आपका कल्याण नहीं है, नहीं, उससे आपका कल्याण नहीं है। देह के व्यक्ति, देह के संबंधी, देह के वैभव, देह के पदार्थ, देह की दुनिया सब कुछ छोड़। क्यों ऐसा कहता है बाबा? क्योंकि जब हम इस धरती पर पहली बार उतरे थे, परमधाम से सीन तैयार करो, हम परमधाम में सभी बाबा के साथ हैं, और वहां पर हमें कोई एहसास नहीं है कि मैं बाबा के पास हूँ। है एहसास? कुछ भी एहसास नहीं है, लेकिन चमकती हुई जरूर है वहां पर। क्यों? क्योंकि एकदम प्योर है, तो चमकती हुई जरूर है हम वहां पर, लेकिन हमें एहसास नहीं है कि हम प्रकाशमान हैं और हम अपने पिता परमात्मा के पास हैं। ये एहसास या फीलिंग या अनुभूति कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा उस समय बीज के रूप में है, बीज के अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर कब आता है? जब उस बीज को धरती मिलती है, नहीं? जब धरती मिलेगी तब उस बीज में जो अंदर है वो बाहर आता है। लेकिन हमको वहां जो परमात्मा की समीपता है किस लिए है? भले वहां पे एहसास नहीं है कि मैं उसके पास हूँ, पर हम हैं उसके पास। क्यों है वहां पे उसके पास? ऐसे देखा जाए तो बाबा जितनी भी कहते हैं ना, जितनी भी आत्माएं हैं सबका घर वो है, सभी बाबा के पास है। हाँ, फर्क पड़ेगा फर्स्ट रो में कौन है, सेकंड रो में कौन है, थर्ड रो में कौन है, लेकिन सभी के सभी परमधाम में ही है। हाँ, अपने घर में है। क्यों? क्योंकि समानता है, प्योर फॉर्म में है ना वहाँ पे। तो बाबा तो एवर प्योर है, हम भले कर्म क्षेत्र में आके अपनी प्योरिटी गंवाते हैं, लेकिन वहाँ तो हम प्योर है ना। उस प्योरिटी की जो समानता है उस कारण से हम वहाँ हैं। न सिर्फ प्योरिटी है, लेकिन जो गुण बाबा के हैं वो ही मेरे में है। बाबा को अगर मैं कहती हूँ कि बाबा प्यार का सागर है, तो प्यार हमारे अंदर भी भरा हुआ है। उसको हम कहते हैं शांति का सागर, शांति हमारे अंदर भी भरी हुई है। उसको कहते हैं सर्वशक्तिवान, तो शक्ति हमारे अंदर भी भरी है। उसको अगर हम कहते हैं आनंद का सागर, आनंद हमारे में भी भरा हुआ है। कैसे हमको पता चलता है भरा हुआ है? बाबा ने कहा ये तुम्हारे अनादि संस्कार है। अनादि माना अभी चक्र में आए नहीं हो, आदि अंत में चक्र जो है, आदि अंत चक्र का उसमें आए नहीं हो फिर भी है, उसको कहते हैं अनादि। तो वो सेम अनादि ओरिजिनल, तो वो मेरे पास वहां पर है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति वहां पर नहीं है, बीज रूप में है। तो वो जो अनादि संस्कार है वही क्या है? वही तो धर्म है, वही तो धारणा है ना। आत्मा ने उसको धारण किया हुआ है, उसको वो आत्मा ने धारण किया हुआ है। वो अनादि संस्कार ही धर्म, धारणा मतलब जो धारण किया हुआ है। तो सृष्टि चक्र में आने से पहले ही आत्मा ने उसको धारण किया हुआ है, और जब ऐसी आत्मा जिसने ये धारण किया हुआ है, ये सारे ही श्रेष्ठ है ना, शांति प्रेम खुशी ये सब क्या है? श्रेष्ठ गुण है ये सारे। तो श्रेष्ठ गुण और शक्तियों से यहाँ तक कि ज्ञान भी भरा हुआ है, ज्ञान स्वरूप है ना हम, तो ये सब ज्ञान भी भरा पड़ा है, गुण भी भरे पड़े हैं, शक्तियां भी भरी पड़ी है। ये हमारी धारणाएं हैं, जो अभी बीज रूप में है, सुप्त रूप में है, सुषुप्त है, लेकिन जैसे ही आत्मा नीचे आएगी, माँ का गर्भ रूपी उसको धरती मिलेगी, अंकुर निकलेगा ना, अंकुर बाहर फूटता है ना, और वो अंदर से जो हमारी तरंग किस रूप में फूटता है? अभी बच्चा तो अंदर है, आत्मा तो अंदर है, अभी वो बोलता तो कुछ भी नहीं है। तरंगे, कोई भी चीज आप देखो, एक गुलाब का पुष्प है, पुष्प को आप देख रहे हो लेकिन इसकी सुगंध देखते हो क्या आप? लेकिन आपके नाक तक आती है वो, तो कैसे आ रही है वो? तरंगों के माध्यम से आ रही है। तो अंदर में आत्मा जैसे ही वो गर्भ में प्रवेश करती है, गर्भ में भी कब प्रवेश करती है? जब वो गर्भ एक इंसान की आकृति प्राप्त कर लेता है तब। माताएं मेजॉरिटी बैठी है ना यहाँ पे, अनुभव होगा, कहते माताओं को हलचल महसूस होती है बच्चे की, है ना? ढाई तीन मास में वो आकृति पूरी तैयार हो जाती है बच्चे की, जो मास का पिंड था वो आकृति में बदल जाता है मनुष्य की, और उस समय वो आता है, हलचल होती है और वो तरंगे उसकी फैलना शुरू, क्योंकि धरती मिल गई ना, अंकुर फूटेगा। तो अंदर में जो भी धारण करके आए हैं ना, जो मेरे अनादि संस्कार, फर्स्ट है अभी बर्थ मेरा, मेरा बर्थ अभी फर्स्ट है, जब ऊपर से मैं पहली बार आई हूँ। आज हम जब लेसन कराते हैं आत्मा का, तो हम बोलते हैं आत्मा में पांच प्रकार के संस्कार है, ऐसे बताते हैं ना। एक होते हैं, हम बताते हैं पूर्व जन्म के संस्कार बताते हैं, और दूसरा है वर्तमान जन्म के, जिसको हम तीन में बांट देते हैं, एक माता पिता से मिला, एक वातावरण से मिला, और एक मैंने कुछ दृढ़ता के आधार से, तीन। लेकिन वो है क्या? वर्तमान जन्म के संस्कार है ना। और एक बताते हैं ओरिजिनल संस्कार। अभी फर्स्ट बर्थ ले रही हूँ, है मेरे पास वर्तमान जन्म के, पूर्व जन्म के संस्कार? कुछ भी नहीं है वहां भी मेरे पास पूर्व जन्म के संस्कार। वर्तमान भी अभी जस्ट लिया है ना जन्म, कैसे बोलूंगी वर्तमान जन्म के संस्कार? अभी बाहर तो आऊं, तो अभी क्या कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ जो अनादि संस्कार लेकर उतरी हूँ उसको बाहर प्रेषित कर रही हूँ तरंगों के माध्यम से। और वो बच्चा जब वो पूरा विकसित होगा, बाहर आएगा, बच्चे को देखते ही कैसा लग, भले वो कलर में काला है, आज की डेट में भी बच्चा भले काले रंग का भी क्यों नहीं हो, लेकिन कैसा लगता है? अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है? वो जो अनादि संस्कार तरंगों के रूप में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और हम उसको अनुभव करते हैं। वो देखने की चीज नहीं, अनुभव की चीज है। तो पहला जब बर्थ लिया होगा हमने, और जस्ट पहले बर्थ में बच्चे के रूप में इस सृष्टि में माँ के गर्भ से बाहर आए होंगे, सोचो कितना रिफ्लेक्शन हमारे से होगा, हर गुण की रिफ्लेक्शन होगी। और इसलिए वो बच्चा कुछ भी करेगा, वो सारा उसमें आ रहा है, इसलिए वो हर कर्म कैसा है उसका, श्रेष्ठ हो गया ना अपने आप। धर्म श्रेष्ठ मतलब देखो दो बातें हैं, एक है धर्म, एक है कर्म। धर्म आत्मा कहते हैं, कर्म आत्मा कहते हैं कभी? इसका मतलब धारणा कहाँ होती है? आत्मा में होती है। अच्छा, कर्म के लिए हम कहते हैं कर्म इंद्रियां, धर्म इंद्रियां बोलते हैं कभी? तो कर्म कौन करेगा? इंद्रियां करेगी, है ना? तो एक है धर्म, एक है कर्म। तो धर्म है आत्मा में और कर्म होगा इंद्रियों से, और कर्म इंद्रियों से तभी होता है जब उस शरीर में आत्मा है, तभी कर्म होगा ना, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। डेड बॉडी डिक्लेयर कर देंगे, वो कर्म नहीं करेगी। सब कुछ है, आंख भी है, नाक, सब कुछ सलामत है, तो भले इंद्रियां है वहां पे, परंतु कर्म नहीं करेगी। तो इंद्रियां भी कर्म कब कर पाती है? जब उस शरीर के अंदर वो आत्मा निहित है। और चूंकि इंद्रियां कर्म तब कर पाती है जब आत्मा भीतर है, इसका मतलब जब इंद्रियां कर्म करेगी तो आत्मा में जो धारणा है वही रिफ्लेक्ट होगी, वही रिफ्लेक्ट होगी ना। तो शुरुआत में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अनादि संस्कार है, और इसलिए हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट कर रही हूं। और इसीलिए बाबा ने कहा कि सत्ययुगी दुनिया में आपस में प्रेम और प्यार है, खुशियां है, उमंग है, उल्लास है, आनंद है, भाईचारा है, यहाँ तक कि गाय और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि सब अनादि संस्कार से उतरे हैं ना, फर्स्ट बर्थ है, कुछ आगे चढ़ाई नहीं है दूसरा। तो अब होता क्या है, देखो पूनम का चांद देखा है आपने, पूनम का चांद जब देखेंगे ना तो चांद जैसे गोल होता है ना, वो गोल पूरा खिला हुआ है, लेकिन फिर उसके ऊपर एक बाउंड्री है, सर्कल है, और वहां से प्रकाश निकल रहा है, वो अपने आप में उसके अंदर है, उसको कहते हैं लाइट के कार्ब के अंदर है वो। ऐसे ही हम भी जब उतरे हैं तो 100% प्योर है ना हम भी, तो कल्पना कीजिए मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप और मेरे और एक पूरा एक घेरा और उसमें से प्रकाश निकल रहा है। अच्छा दूसरी बात, हम जब ऊपर से उतरे तो कहा जब ऊपर थे तो संकल्प तक भी नहीं था कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पिता के सामने, संकल्प में भी नहीं था। लेकिन जैसे ही धरती पर आए, ये धरती बीज के लिए कहते ना, यहाँ पे धरती माना क्या है, शरीर क्या है, पांच तत्वों से बना है, इसको हम बोलते हैं ना पंच भौतिक तत्व। तो ये भी एक एनर्जी है, तत्व भी एक एनर्जी है, तो भौतिक एनर्जी और वो कौन सी एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी, ये दोनों जब पास में आते हैं तब अंकुर फूटता है ना, और अंकुर फूटना माना तरंग, विचार से भी पहले स्टेज है तरंग, और वो तरंग के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में मेरे अंदर जो स्टोर है वो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब जैसे ही बच्चे ने गर्भ से बाहर आया तो ये जो मन है ना, दोनों के बीच की कड़ी है, किस किस के बीच की कड़ी है, शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी है, कि आत्मा के अंदर में जो अनादि संस्कार है वो मन के द्वारा इंद्रियों से बाहर आ रहा है, और दूसरा इंद्रियों के द्वारा मन से होते हुए आत्मा के पास बाहर के जगत की छाप पड़ेगी। तो ये छाप क्या करती है, हर बाहर का जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यवहार में आ रहे, जो कुछ भी बाह्य जगत में इंद्रियों के द्वारा जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, वो पूरा का पूरा मन के द्वारा आत्मा में जाएगा। और आत्मा में जाएगा मतलब क्या होगा, आत्मा को हमने कैसे देखा, अपने आप में एक सूक्ष्म बिंदु, भले चांद समझ लो, लेकिन चारों ओर उसके घेरा है। अब ये बाहर वाली चीजें उस घेरे को चिपकती जाएगी, ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। तो अब हर अगला कर्म जब करेंगे तो हर अगले कर्म में, जो पहली बार जब उतरे, पहली बार जब मैं गर्भ से बाहर आया, ट्रांसपेरेंसी 100% थी, इसलिए 100% शांति प्रेम की तरंगें बाहर आ रही थी। लेकिन अब बाहर का भी जब अंदर गया तो अब जो आएगा तरंग उसका 100% नहीं रहेगा ना, अब कम हो जाएगा ना, इसलिए बाबा कहते क्यों तुम 16 कला से 14 कला बन गए। परंतु अब भी चूंकि अंदर से पूरा ही पूरा, भले कम हो रहा था परसेंटेज शक्ति का, प्रेम का, लेकिन जा तो सिर्फ और सिर्फ शांति प्रेम ही रहा था ना, और चूंकि सब लोग वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे, सभी के सभी, इसलिए बाहर से भी जो आ रहा था अंदर वो भी मैला नहीं था, परंतु शरीरों की इमेज, मानो भौतिक एनर्जी वाली इमेज जा रही थी उसके ऊपर, और इस कारण से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही थी। और इसलिए दो युग तो बाबा ने कहा तुमने एंजॉय किया, दो युग तक आपको पता ही नहीं था अशांति क्या चीज होती है, नफरत क्या चीज होती है, गुस्सा क्या होता है, चिड़चिड़ापन क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, मेरे को हर्ट हुआ ये क्या होता है, किसी को पता ही नहीं होता है। नहीं था ना, क्योंकि मन इसके करीब था ना अभी। ये तो बाहर से जब अंदर जाता गया जाता गया जाता गया तो इधर का थोड़ा हल्का हो रहा है और इधर का थोड़ा भारी हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। ये वाला हल्का, ये वाला भारी, ये वाला और हल्का, ये वाला और भारी, ये वाला और हल्का, ये वाला और भारी, ऐसे करते करते वो त्रेता के एंड का एक क्षण आया जहाँ ये हल्का हल्का होते होते जीरो पे आ गया और ये भारी भारी होते होते अस्तित्व में आ गया कि मैं शरीर हूँ, है ना। ऐसे हुआ और इसलिए अभी तक जब तक ये हल्का भी भले था ना कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा होने के कारण मेरी धारणाएं मुझे स्मृति में थी कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो जब धारणा में वो गुण थे तो कर्म में आ रहे थे और इसलिए हर कर्म मेरा श्रेष्ठ था, हर कर्म मेरा श्रेष्ठ था और इसलिए जीवन सुखों से भरपूर था। लेकिन दो युग के बाद मैं यही भूल गई कि मैं आत्मा हूँ, मुझे याद आ गया मैं शरीर हूँ, तो वो धारणाएं भी भूल गई ना। अब वो धारणा भूलना माना अपने आप। पहले क्या था हमारे को, दो युग तक क्या था, आत्मा और शरीर दोनों का भान था और उसमें ये पता था कि मैं आत्मा एक्टर हूँ और ये शरीर के द्वारा रोल प्ले कर रही हूँ, ये दो का भान था जरूर। तो वो अपने आप में था दो का भान कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर अलग है, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। लेकिन जब टोटल मैं आत्मा भूल गई तब भी दो का भान आया, लेकिन वो भान यहाँ से उठकर आप में और मेरे में भान आ गया, ये मेरे से अलग, ये रईस या मैं गरीब, ये राजा या मैं दासी, या जो कुछ भी है, वो भेद बुद्धि जागृत हो गई। और पहले जो भेद था वो अपने आप में था कि मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है, लेकिन दो युग के बाद ये वाला भेद खत्म हो गया। ये रियल भेद था, ये रियल भेद था कि ये सत्यता थी कि मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है, लेकिन ये पूरा दो युग के बाद ये रियल भेद खत्म होके झूठा भेद खड़ा हो गया, क्योंकि मिरर के सामने गई ये मैं हूँ। अब सामने वाले को भी देखा तो मेरी शक्ल थोड़ी कम सुंदर, उसकी ज्यादा, मेरे को भी इससे ज्यादा बनना है। पहले तो आत्मा दिख रही थी ना, तो आत्मा में सब में वही दिख रहा था, सब में सुख शांति भरी पड़ी है, लेकिन बाद में तो भेद बुद्धि, बाद में झूठी वाली भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई। क्या नहीं था, हाँ क्यों नहीं होंगे? आप तैयार नहीं होने वाले क्या वहाँ पे, हाँ स्नान पानी नहीं करने वाले क्या, श्रृंगार वहाँ तो हर पल श्रृंगार करने वाले हैं। बाबा कहते यहाँ मैं जितना ज्ञान से तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूँ उतना फिर वहाँ पे आप शरीर का श्रृंगार करने वाले हो ना, ऐसा ही होता है ना। तो शीशा क्यों नहीं होगा, लेकिन उस समय मुझे स्मृति है ना कि ये अलग है, कि उस समय मुझे स्मृति है कि मेरा कॉस्ट्यूम सुंदर है, ये मेरा कॉस्ट्यूम है और मैं आत्मा हूँ, ये क्लियर था। तभी तो शरीर छोड़ते समय याद रहेगा ना, खुशी से छोड़ेंगे ना हम, वो सूक्ष्म स्मृति रहेगी, आप बोल बोल के नहीं बोलेंगे किसी को, एक सूक्ष्म स्मृति रहती है। आप यहाँ बोल बोल के थोड़ी बताते मैं लंदन क्यों, मैं यहाँ क्यों, अंदर में सूक्ष्म स्मृति रहती है, जब कोई पूछता है तो बराबर हाथ उठता है, लेकिन बार बार थोड़ी बोल रहे थे मैं लंदन क्यों, मैं आपको याद दिला रहे थे अपने आपको, मैं लंदन क्यों, मैं मॉरिशस की हूँ, मैं अफ्रीका की, दिलाते हो रोज याद। लेकिन सूक्ष्म में स्मृति भरी हुई है, जो ऐसा क्वेश्चन आता है आपके हाथ खड़े हो जाते हैं। वही तो वहाँ पे वो बुद्धि में है ना, एक्टर हूँ करके, एक्टर हूँ तो मैं एक्टिंग करने के लिए आया हूँ ना, वो मुझे माना हम खेलने आए हैं ना। देखो बच्चा खेलने जाता है उसको पता होता है ना, उसको भी खेल आता है मेरे को भी खेल आता है, लेकिन दोनों खेलेंगे देखते क्या मजा आता है, ऐसा ही होता है ना। तो हरेक को स्मृति है कि मैं एक्टर हूँ, और हरेक को स्मृति है कि मैं ये पूंजी लेकर आया हूँ अनादि संस्कार वाली, और उसको हम यूज कर रहे हैं और खेल रहे हैं। देखो जैसे आपको पता मुझे गाना गाने आता है, इसको भी पता, तो चलो ना वो गाने गाने की क्या खेलते हैं, पहेलियां खेलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ चलो हम अंताक्षरी खेलते हैं, क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मालूम है उसको भी गाना गाने आता है, उसको भी गाना गाने आता है, लेकिन एक्सप्रेस करे कुछ तो मजा आए ना, मजा भी आए ना, वो भावनाएं उठेगी, तरंगे उठेगी, ऐसा होता है ना। तो वहां पर जो हम बैठे थे तो तरंगे तो कुछ भी नहीं उठ रही थी ना, तो एंजॉयमेंट नाम की चीज नहीं थी ना। भले मेरे पास शांति का गुण है पर शांति की अनुभूति वहां एहसास ही नहीं है, प्रेम का गुण है प्रेम के गुण का एहसास ही नहीं, वो तो जब हम रंगमंच पे आएंगे अनुभूति तो तब होगी ना हमें। तो धर्म श्रेष्ठ, धारणा श्रेष्ठ होने के कारण हमारे कर्म श्रेष्ठ हो रहे थे। लेकिन अब बाबा कहते हैं संगम पे भी कर्म तुम्हारे श्रेष्ठ है, तो सतयुग त्रेता में भी कर्म श्रेष्ठ थे, और अभी संगम पे भी यही करना है। बीच वाला क्या हो गया हमारा, उल्टा हो गया, दो युग, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, बाद के दो युग क्या हो गए, और वो कैसे हुए वो भी मैं बताती हूँ, कैसे धर्म से हम भ्रष्ट होते हैं। ये जो ऊपर ऊपर की इमेज, बाहर की इमेज है उसके ऊपर आती गई ना, तो अंदर का हम भूल गए, तो हम टोटल केंद्रित हो गए शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति। अब चूंकि अंदर आप जब गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी की एक नॉर्मल स्पीड होती है कि आप 60 से 100 के बीच चलाएंगे या 80 के, ठीक है भले 60 पे चलाओ, 70 पे चलाओ, 75 पे चलाओ, नुकसान वाली नहीं है, लेकिन इसके पार गए तो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, ये दो लिमिट होती है कि इस मिनिमम से भी आप धीरे जाएंगे तो क्या गाड़ी चला रहे हो तुम, बोलेंगे ना ऐसा चीटी चाल चलेगा, ये तो गाड़ी में बैठने का मतलब क्या, उसे तो मैं पैदल चल जाती हूँ, बोलेंगे ना आप ऐसे। हाँ तो एक लिमिट है, एक मिनिमम लिमिट है और एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके बीच में अगर आप चल रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मतलब एंजॉय कर रहे माना अपने मन की जो स्थिति है ना उसको स्टेबल करके जर्नी कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्पीड मैक्सिमम और मिनिमम है उस मैक्सिमम को थोड़ा ही आप क्रॉस करने जाओ, जैसे स्पीड बढ़ाई आप देखेंगे ये स्टेबिलिटी नीचे होती है। आप कई बार, हम खुद नहीं ड्राइव करते हैं लेकिन ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है, और अगर उसने थोड़ी, ये क्या कर रहे हो, स्पीड उसने बढ़ाई है, स्टेबिलिटी मेरी कम हुई, मतलब यहाँ पे देखो मेरी स्टेबिलिटी कैसे खत्म होती है सिर्फ स्पीड मात्र से, स्पीड मात्र से। और वो बहुत स्लो भी चला था तब भी, ऐसे में नॉर्मल बैठी थी, सब कुछ बात कर रही थी, ये क्या आप गाड़ी चला रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा बोलना माना ही क्या, मेरी स्टेबिलिटी खत्म हो रही है ना, और मेरी भाषा भी देखो कैसे हो रही है, समझ में आ रहा है मेरे गुण कैसे भ्रष्ट, माना क्या हम कई बार कहते ये पथ भ्रष्ट हो गया है, माना इसका पथ था इधर जाने का, वो चला गया इधर, इसको ही बोलते भ्रष्ट। तो जब हम बोलते धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, अब क्या हुआ, हम धर्म से भ्रष्ट हुए, मेरी धर्म की श्रेष्ठता कब तक थी, इस लिमिट के बीच में थी, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, इसके बीच में हूं तो श्रेष्ठता, लेकिन यहां से बाहर गई, माना ये मेरा पथ था, ये मेरा पथ था, लेकिन मैंने इस मैक्सिमम से दूसरी साइड, माना मैं पथ से भ्रष्ट हो गई, और इधर भी गई तो भी पथ से भ्रष्ट हो गई, तब कैसे कहा कि इधर से पथ से भ्रष्ट होना माना है, ये रेंज थी कि इसमें शांति भी मिल रही है, प्रेम से भी चल रहे हैं, अंदर में मनोबल भी महसूस हो रहा है, आनंद भी महसूस हो रहा है, लेकिन इसके थोड़ा ही बाहर जाती हूँ वो डाउन हो रहा है। और वो जो डाउन हुआ तो वो कर्म में दिखा, और हुआ कैसे, कर्म के कारण ही हुआ। तो क्योंकि आत्मा की विस्मृति, शरीर की स्मृति, शरीर की स्मृति माना इंद्रियों को मैं ज्यादा यूज करना, उसमें मेरा फोकस हो जाता है ना पूरा, तो इंद्रियों को ज्यादा यूज करना है, और उसके माध्यम से, क्योंकि आत्मा की स्मृति चले जाने से आत्मा के गुणों की स्मृति चली गई, तो अब वो गुण मुझे महसूस नहीं हो रहे ना, तो फिर मुझे लगता है कि इंद्रियों का ज्यादा उपयोग करके मैं इन गुणों को हासिल करूंगी। यही तो आज कलयुग के एंड तक हुआ है ना, कि हम ज्यादा धन संपत्ति का जुगाड़ कर लेंगे, ज्यादा मान प्रतिष्ठा पा कर लेंगे, तो मेरे जीवन में धन खुशी आ जाएगी, यही हो रहा है ना हमारा। तो ये जो कहा कि इंद्रियों के तरफ फोकस होने से मैं धर्म से भ्रष्ट हो गई, और धर्म से भ्रष्ट हो गई माना कर्म कर रही हूँ। आप आज भी देखो कहीं पर भी, आप एक अपनी एक नॉर्मल स्पीड है आपकी जिसमें हम काम कर रहे थे, किसी ने आया 10 बज गए, आपका इतना काम अभी तक नहीं हुआ है, फटाफट करो, आप फटाफट करते हो, लेकिन ये स्थिति कुछ नहीं होती, वाइब्रेशन शांति के होते ही नहीं है, नहीं होता है वो, आप नोटिस करना कभी भी। एक नॉर्मल स्पीड में जो आप शांति पूर्वक कर रहे थे, प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे, और किसी ने आया नहीं स्पीड बढ़ाओ, इतना टाइम होना है, तो पूरा फोकस फास्ट फास्ट इंद्रियों से फास्ट कर रहे हैं, और इधर कुछ अनुभव ही नहीं कर रहे कि शांति का, प्रेम का। तो स्पीड बढ़ना कर्मों की जितनी ज्यादा, मतलब फोकस जितना ज्यादा इंद्रियों पर, उतना ही अपने आप हम धर्म से दूर हैं। और इसको ही कहा कि धर्म से दूर तो धर्म भ्रष्ट। और ऐसे वाले कर्मों की रिजल्ट देखो, आज लोग रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन जिम्मेवारियों का निर्वाहन कर रहे हैं, उसके एंड में मैंने इतना इसके लिए किया पर मुझे मिला क्या, वही गाली देते रहते हैं, वही अपमान करते रहते हैं, इससे तो अच्छा मैं करूं नहीं, ऐसे ही बोलते हैं ना रात, क्यों, क्योंकि लेकिन करते समय क्या किया मैंने, पूरा फोकस सिर्फ कर्म पे रखा, उस समय धारणा कुछ भी नहीं रखी, और इसलिए इतना सारा कर्म करने के बावजूद भी खाली के खाली रह गए। ऐसा ही होता है, सालों हम जिंदगी गंवा देते हैं, नहीं बच्चों को बड़ा करना है, ये करना है, इनका जीवन सेटल हो जाए फिर सब देखेंगे, जो भी है भगवान की बातें, धर्म की बातें बाद में देखेंगे। तो 5, 50, 60 साल सिर्फ कर्म किया बिना धर्म के, तो रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, रिजल्ट में क्या मिलने है, खाली खाली। और इसलिए जो हम कहते हैं ना, कई बार लोगों की मान्यता क्या, जब हम उनको कहते हैं कि आइए ज्ञान की बातें कुछ सीखिए, अध्यात्म को जीवन में प्रवेश दीजिए, बहन जी वो देखेंगे, पहले हम अपनी जिम्मेवारियां तो निभा लें, पीछे सब हम देखेंगे। तो वो इतनी उम्र ऐसे निकाल दी, कर्म किया बेशक पर बिना धारणा के किया, क्योंकि बाबा आके क्या सिखा रहा है, हम जो उठते बैठते थे, खाते पीते थे, पहले बोलते थे, मित्रों से मिलते थे, संबंधियों से मिलते थे, वो सब रुकवाया क्या, कुछ भी नहीं रुकवाया उसने, सिर्फ एक ही काम दिया, बच्चे ये सब करते हुए ना स्मृति रखो मैं आत्मा हूँ, और जब ये स्मृति रखोगे आत्मा हूँ, तो आत्मा के जो अनादि संस्कार तुम लेके आए हो, जो मेरे समान वाले ही है तुम्हारे, वो भी तुम क्या करोगे, रिफ्लेक्ट करते रहोगे, तो कर्म में क्या हो जाएगा, सुहागा आ जाएगा ना, कर्म वैल्यू वाला बन जाएगा ना, और उसकी वैल्यू फिर ज्यादा मिलेगी, और बिना उसके किए अंत में कुछ नहीं मिला, क्या किया तुमने हमारे लिए कुछ किया, तो बच्चे फिर यही बोल रहे हैं आज, और तुम्हारा काम था ना हमारे को पालना पोषना। अच्छा, ऐसे जब सुनते हैं तो कैसा लगता है माँ बाप को? फिर सिर्फ वो बात नहीं, हर एक की, हाँ, ड्यूटी थी आपकी, नहीं तो कारण क्या है? क्योंकि उस समय धर्म पर हमारा ध्यान नहीं रहा ना, सिर्फ कर्म पर रहा, वैल्यूज। तो हमारे पास बिना वैल्यूज का कर्म किया, वहां से भी बिना वैल्यूज वाला जवाब आ रहा है। बिना वैल्यूज का जवाब क्यों आ रहा है? हमने कर्म करते समय वैल्यूज माना ही धारणा ना, उस पर हमने अटेंशन नहीं रखा। आज देखो बच्चे क्या कहते हैं बड़े हो जाते हैं, माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, बच्चे आके उनके घर में कुक रखा हुआ है, वो खाना बना रही है उनके लिए, तो बड़े होके वो भी क्या, क्योंकि उनको बुद्धि में क्या है, तुमने हमको कौन से प्रेम से पालना दी, वो तो कुक रख दिया था ना तुमने हमारे लिए, तो मतलब तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम था क्या कुछ? फिर हमारे पास क्यों रहेगा तुम्हारे लिए टाइम? यही हो रहा है ना, वैल्यूज देखो कैसे कम हो रही है। हमने सोचा मेरे पास टाइम नहीं है, कुक रख देते हैं, वो बना देगा, वो खिला देंगे उसको। बच्चे को जो प्यार चाहिए था, बेटा चल खाना खा ले, बेटा एक रोटी और खा ले, ये क्या आ रहा था उसके पास? माँ के प्यार की तरंगे पहुंच रही थी, तो वो जब उसकी तरंगे उसके दिल में पहुंची हुई होगी तो बाद में वही तो उसमें से भी आएगा, अरे मेरी माँ ने रातों जाग जाग कर मेरे लिए ऐसा किया। तो इधर से वैल्यूज जाएगी, उधर से भी वैल्यू वाला उत्तर मिलेगा। तो जब आपने इधर से वैल्यूज भेजी, आप वैसे ही भरे हुए हैं, और फिर वहां से भी मिल रहा है, तो आपका भरपूर पड़ता कितना बढ़ रहा है आप देखिए। इसलिए क्यों कहते हैं कि धर्म धारणा को श्रेष्ठ बनाओ, कर्म अपने आप श्रेष्ठ बनेगा। और कर्म जब अपने आप श्रेष्ठ बनेगा, तो कर्म को बीज अगर पकड़ ले, तो धरती में बोया हुआ बीज की क्वालिटी के आधार से उसमें से आने वाले फल की क्वालिटी पता चलती है। आप किसी पेड़ में फल लगे हुए और उसको तोड़ने जाओ और खाओ, आपको पहले नहीं पता था कि किस प्रकार का बीज बोया गया है, लेकिन फल खाकर आप बता सकते हैं कि ये बोते समय कौन सी क्वालिटी का था। तो बाहर क्या आ रहा है वहां, इसीलिए तो कहा बाबा ने कि जब कर्म कर रहे हो, आज जितना हम क्या सोच रहे थे, नहीं ये काम कर लूं फिर शांति से जिएंगे, तो बीज तो वो वाला डाला नहीं, बीज तो खाली खाली रह गया, वैल्यू से खाली खाली रह गया ना, तो बाद में कैसे फल आएगा? हाँ, तो तब तक वैल्यूज को महत्व नहीं दिया। तो अब बाबा ने कहा कि चलो ये दो युग तुम्हारे ऐसे गए, क्योंकि आत्म स्मृति चली गई, तो वो आत्मा के गुणों की स्मृति चली गई, तुम धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए, लेकिन वापस अब ये युग आ गया है धर्माऊ युग, धर्माऊ युग। और अगर भक्ति मार्ग में भी आप देखें तो धर्माऊ युग की क्या मान्यता है, इस युग में, हाँ, मतलब भक्ति मार्ग में देखे तो वो हर 3 या 4 साल के बाद बुध एक पुरुषोत्तम मास या अधिक मास आता है, और उसकी विशेषता क्या होती है कि इस मास में किया गया पुण्य कर्म वही वाला पुण्य कर्म मैं अगले मास में करूंगा, उसकी रिजल्ट वो नहीं मिलेगी, और इसलिए उसमें पूरा फोकस्ड हो जाते हैं। तब बाबा ने अभी आके यही कहा कि आप थे धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, लेकिन सिर्फ बीच का पीरियड तुम्हारा ऐसा रहा, कोई बात नहीं। अब बाबा ने क्या, देखो अब जो पहली बात बताई कि आत्मा के ऊपर चढ़ते गया ना, तो दो युगों का तो क्या, अभी 4 युगों का चढ़ गया है उसके ऊपर, और इसलिए जो बिल्कुल लाइट जिसको बाबा कहते हैं कि नो कला, पहले फिर भी हम 16 कला से 14 तक आए, 14 से 8 तक पहुंचे, मतलब जो ओरा बाहर आ रहा था ना उसका, क्योंकि बाहर का उसके ऊपर चढ़ता गया, पहले तो जो चढ़ा फिर भी आत्मस्मृति के बेस पर किया हुआ कर्म की मैं चढ़ी, बाद में तो वो भी नहीं थी, तो इसलिए बाद वाला जो चढ़ गया ना उसके ऊपर बहुत जैसे कि एक डार्क घेरा हो गया, तो अब थोड़ा बहुत भी रिफ्लेक्शन बाहर नहीं आ रहा है। अब बाबा ने इसलिए कहा कि अब चलना नहीं है, दौड़ना भी नहीं है, जंप भी नहीं लगाना है, उड़ना है। क्यों? क्योंकि देखो ये बताया आत्मा, ये उसके ऊपर चारों ओर घेरा लग गया बहुत जबरदस्त। अब आप सोचेंगे कि हमने देखा कैसे था, ये आत्मा के संस्कार, बीच में मन है, ये आत्मा के संस्कार मन के द्वारा बाहर आ रहे थे इंद्रियों से, फिर इंद्रियों से जो मिला वो मन के द्वारा आत्मा के ऊपर चढ़े, है ना, ऐसे हुआ ना। तो अब अगर हम चलने की स्पीड रखेंगे, मतलब हम तो टोटली भूल गए थे कि इस घेरे के अंदर प्रकाश स्वरूप अभी भी विद्यमान है, लेकिन बाबा ने आके याद दिलाया, लेकिन घेरा तो अभी भी है, भले याद दिलाया लेकिन घेरा तो अभी भी है। तो अब अगर मैं इसको यहां से सिर्फ सीधा जाने की कोशिश करूंगी बहुत टाइम लगेगा ना, और सीधा जाते हैं चलो नहीं दौड़ के जाऊं तो भी टाइम लगेगा, इसलिए बाबा ने कहा उड़ो। उड़ो मतलब अब सीधा उस अंदर घेरे के अंदर उड़ के पहुंचो, मतलब हर कर्म करते हुए। भले लोग कहते हैं ना, बहन जी आप हमें कहते हैं कि अपने आप को कहो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं शांत स्वरूप, मैं तो बहुत अशांत हूँ, तो मैं क्या अपने आप को चीट करूँ क्या बोल के मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे अंदर प्रेम है ही नहीं, मेरे को तो उसको देख के बड़ी घृणा आती है, पर आप कहते हो अपने आप को बोलो प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, झूठ चीटिंग करूँ क्या मैं? नहीं, बाबा कह रहा है अंदर में है इसलिए उड़ो, यहां से सीधा उस बीच वाले में उड़ो, उड़ के पहुंचो। ये वाले भले है मेरे पास लेकिन मुझे इसका ध्यान नहीं देना है, उड़ के सीधा वो सेंट्रल पार्ट पे, और वो सेंट्रल पार्ट पे उड़ के पहुंचेंगे माने विश्वास के साथ है ना मेरे पास, तो वो विश्वास के साथ की है मेरे पास, उसको वापस कर्म में लाऊंगी, ये घेरा टूटेगा, ये घेरा टूटेगा। तो ये मत कहो कि नहीं मेरे पास गुस्सा है, और मैं कैसे कहूं कि नहीं मैं शांत स्वरूप हूं, गुस्सा भी है तो वो भी है लेकिन घेरे के अंदर है जो तुम भूल गए थे, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं। और रियलाइज होता है ना, रियलाइज होता है ना कि वो चंद्रमा उसके चारों तरफ वो लाइन, और जो आता गया वो कहां जाएगा, उसके चारों ओर ही तो आएगा, जाएगा किधर, ढक दिया उसको पूरा, और ढक दिया तो हम भूल गए, लेकिन कोई याद कराने वाला आ गया ना। एक छोटा बच्चा होता है बचपन में बहुत होशियार, बहुत होशियार, इंटेलिजेंट, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड क्लास में भी गया तो भी फर्स्ट, थर्ड में भी गया तो भी, फिर सिक्स सेवन फर्स्ट क्लास पास हो रहा था, क्योंकि बहुत अटेंशन भी देता था पढ़ाई में, लेकिन एक साल में उसने अटेंशन नहीं दिया, खेल पाल में ज्यादा लग गया, और मार्क्स उसके तो उसकी सूरत भी बदल जाती है ना, उदास हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, लेकिन जो माता पिता उसको देख रहे थे वो उसको कैसे ठीक करते हैं, सारी मार्क लिस्ट सामने रखते हैं, देख बेटा है ये भी तो तेरी रिजल्ट है, किसी और की है, अगर इस साल तेरी ये रिजल्ट आई है इसका कारण है तूने इस साल तूने ध्यान नहीं दिया, बाकी टैलेंट तो तेरे पास अभी भी है, टैलेंट तो तेरे पास अभी भी है, उसका सबूत है ये देख तेरी मार्क लिस्ट, ये तेरी मार्क लिस्ट बता रही है तेरे पास टैलेंट है, ऐसे नहीं कि टैलेंट नहीं है तेरे पास, लेकिन तू क्या है पूरा खेल पाल में भूल गया ना, तो ऐसे हमारे साथ हो गया, तो बाबा हमारा पूरा जन्म पत्री खोल के दिखा देता है, देखो बच्चे ये तुम थे पहले, तो यही उस बच्चे के लिए क्या हो जाता है, इतना सा भी सिर्फ बोल दे बच्चे को कि बेटा तेरे पास देखो ये टैलेंट है, अच्छा हाँ पापा ये मेरी मार्क लिस्ट है, हाँ बेटा तेरी है, देखना किसका नाम है, तेरा ही तो नाम है, उसमें हिम्मत आ जाती है, अच्छा मैंने इस साल सिर्फ अटेंशन नहीं दिया ना इसलिए हो गया, अब मैं अटेंशन दूंगा, तो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है तुरंत, उसकी दवाई हो जाती है, हमारी भी तो दवाई हो गई ना बाबा सिंह ने बोला तो, कि भले हम ढूंढ रहे थे दुनिया में बहुत कर्मेंद्रियों को फोकस होके उस सारा कर्म कर रहे थे, ये कर्म करके ये अचीव कर लूं वो कर लूं, और उस बीच में अपनी प्राप्ति के लिए दूसरे को भले ना कुछ ना धोखा पहुंचे, यही हो रहा था ना, कमाएंगे, क्योंकि पता था अच्छी बिल्डिंग बना लेंगे, अच्छा बंगला बना लेंगे, अच्छी कार आ जाएंगी तो शायद हमारे घर में खुशी आ जाएगी। लेकिन वो अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए, वो अच्छा कार लाने के लिए कमाते समय चीटिंग करना पड़ा ना बहुत, कि मेरे को चाहिए ना 50 की चीज है, मैंने कहा नहीं ये 500 की चीज है, वो जरूरतमंद है उसको चाहिए, फेंकना ही पड़ेगा उसको, 500 क्या करेगा, फेंकना ही पड़ेगा ना। तो कमाया कैसे, बिना वैल्यू के ना, इसलिए बिना वैल्यू के भी जब कमाया वो उतनी वैल्यू नहीं देता है बाद में। तो चाहे धन कमा रहे हैं, चाहे घरेलू कार्य कर रहे हैं, चाहे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, अगर उस समय धारणाओं को निग्लेक्ट करके कर रहे हैं, उसकी रिजल्ट भी फिर वैसी आ रही है। मन में सामने वाले के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दुनिया लोक लाज के हिसाब से जब बोलने की बात आती है बहुत अच्छा बोलती है, उसके लिए लेन देन करने की बात आती है दुनिया को दिख रहा है ना वो, इसलिए अच्छा कर लेती है कि दुनिया के सामने तो मेरी छवि अच्छी रहनी चाहिए ना। लेकिन मन किसने देखा है, सोचती किसको दिखता है, वो तो सिर्फ पेड़ को पता है, तो वहां गड़बड़ कर देते हैं। और इसलिए रिजल्ट में फिर क्या आता है, देखा मैंने इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा दिया, फिर भी कैसे रहती है मेरे साथ, तुम कैसे थे यहाँ पे पहले। तो धर्म से धर्म वाला आएगा रिजल्ट, बिना धर्म से बिना धर्म वाला रिजल्ट, यही हो रहा है हमारे साथ। तो फिर बाबा ने यही कहा कि धर्म श्रेष्ठ थे, कर्म श्रेष्ठ थे, बीच में ऐसा पीरियड आया, आत्मस्मृति चली गई, जिस कारण से तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए, लेकिन बच्चे फिर से तुम्हारे लिए ये संगम का सुहावना समय, जिसको धर्माव युग कहा, कि जिस युग में वो धर्म जो आपकी धारणा है उसकी पुनः उसने स्मृति दिला दी, वो आज भी मेरे पास है, कहीं गई नहीं है, बस वो घेरे के अंदर है। इसलिए उड़ता पंछी बाबा कहते हैं, उड़ता पंछी बनो, पिंजड़े से बाहर, उस पिंजड़े में आ गए ना, वो काले घेरे के पिंजड़े के अंदर आत्मा है, तो पिंजड़े से उड़ो, उड़ता पंछी बनो, तो मन सीधा उधर फोकस करे, बाहर जो घेरा है उस पे नहीं, कि मेरे में अभी भी गुस्सा है, नहीं है, उधर है, घेरे में है, घेरे के अंदर वहां पे प्रेम है, खुशी है, तो मन का हमेशा ध्यान उधर रहे कि मैं नहीं हूं, मेरे पास प्रेम है, खुशी है, और उसको ही मैं इंद्रियों के द्वारा, कर्म के द्वारा बाहर लाऊं, तो मेरा पुनः धर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। तो जब बता रहे थे कि अंतर, हमने दो युग में भी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ थे और संगम में भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, वो वाला जो धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ था वो धीरे धीरे नीचे उतरा, और संगम वाला धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऐसा ही होगा ना। और इसीलिए बाबा संगम को बहुत महत्व देते हैं, क्यों कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, यहाँ पे तुम पुरुष उत्तम बनते हो, जबकि वहां पे भी धर्म श्रेष्ठ किया सत्युग में भी, लेकिन पुरुषोत्तम से हम नीचे आ गए, हाँ नीचे आ गए। तो इसलिए संगम की बहुत महानता है, और इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग मौजों का युग है, हाँ कल्याणकारी है, जहाँ पर बाप हर पल मेरे साथ है, जो हर पल मुझे गाइड कर रहा है। लौकिक में भी आप दुनिया में देखो, बच्चे कई बार जब हॉस्टल में होते हैं तो होमसिक हो जाते हैं ना, कि भले जो चाहिए फिजिकली वो सब तो माँ बाप ने प्रबंध कर दिया है, लेकिन जो माँ बीच बीच में बोलती थी बेटा खाना खाया, वहां पे कोई बोल नहीं रहा है। तो रोज देखो बाबा मुरली में रोज क्या कर रहा है, रोज ख्याल ही तो रख रहा है, बच्चे ऐसे नहीं करो, बच्चे ऐसा नहीं करो, बच्चे अमृत वेले उठो, ये सब क्या है, ये जो माँ प्यार पुचकार करती रहती है ना, बाप लाड़ दुलार देता रहता है ना बच्चे को, वो ये कर रहा है मुरली के द्वारा। तो उसमें तो जैसे बताते ना, बच्चे को जैसे प्यार मिलता जाता है, वो जो आप उससे आशा न करो वो भी करके दिखा देता है, और अगर प्यार नहीं मिलता है तो जो आशा करते उतना भी नहीं करके दिखाता है। ऐसे ही होता है ना। तो हम कितने लक्की हैं जो माँ बाप अर्थात हमारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर बाप दादा हमारी हर रोज पालना कर रहे हैं, सुबह उठा रहे हैं हमको। हाँ, ऐसा कौन होगा। लौकिक में भी ऐसे गाना गा के कोई उठाता नहीं होगा। और वो भी उठाते भी होंगे या सुलाते भी होंगे तो वो बचपन में, सिर्फ बड़ा होने के बाद थोड़ी। लेकिन यहाँ तो बचपन से लेके आज दिन तक बाबा हमको उस प्रकार से पालना दे रहा है कि मेरे बच्चे धारणाओं को श्रेष्ठ बना ले तो कर्म तो अपने आप श्रेष्ठ हो ही जाएगा। और जहाँ श्रेष्ठ कर्म है तो भाग्य तो श्रेष्ठ अपने आप हो ही जाएगा। तो शुरुआत धारणा की कहाँ से होगी, फिर मन वचन कर्म, बोल बोले कर्म करे, उससे भी पहले बात मन में आती है विचार में, और उस विचार से भी पहले अंदर तरंग उठती है। जब किसी ने समझो मेरे से कुछ किया है, मेरे को देख के मैंने कहा मुझे इसको ईर्ष्या आ रही है, तो क्या होती, शब्द मैंने ईर्ष्या बोला, होता क्या है अंदर में आप देखना, कुछ तो भी ऐसे तरंग उठ रही है पर शरीर में फैल जाती है। गुस्सा भी होता है तो क्या होता है, पर शरीर में तरंग फैल जाती है। या जब हम बोलते बहुत, अरे इसको देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो क्या था, वो तरंग फैल रही थी ना। तो वहां पे अटेंशन देना है मुझे, और वो तरंग मेरी कैसी उठ रही है, सोच के मतलब अंदर में जो मैं किससे कनेक्टेड हूँ, अंदर में अगर मैंने जंप लगा कि वो सेंट्रल पार्ट पे कनेक्टेड हूँ तो प्योर तरंग आएगी, क्योंकि अंदर में आत्मा बिल्कुल प्योर है, लेकिन बाहर का घेरा मैला हो गया। जिसको ही भक्ति मार्ग में गाया, चादर हो गई मैली रे, किस विधि इसको धोऊं रे। हाँ हाँ, तो मैली मतलब ओढ़ने वाला कौन, आत्मा ना। देखो आत्मा अंदर है, वो ओढ़ी हुई है उसके ऊपर। तो मेरा फोकस हमेशा अंदर, वो चादर जो ओढ़ ली उस पे नहीं, वो अंदर वाली पे। तो अंदर वाली पे है तो फिर वो मेरे तरंग वैसी उठेगी, वैसा विचार आएगा, वैसा मैं बोलूंगी, वैसा मेरा कर्म होगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। पर ये गड़बड़ी नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अगर ये होगा तो बाहर से लोगों को दिखेगा बहुत श्रेष्ठ है, पर रिजल्ट नहीं आएगा तब पता चलेगा कुछ तो भी गड़बड़ी थी बीज में। ऐसे ही होता है ना। हाँ, हमारे लिए नहीं है ये सफाई, क्योंकि पहले से ही अंदर कचरा भरा पड़ा है। अभी भी वही करेंगे तो कचरा तो और बढ़ता जाएगा। तो कचरे की सफाई का ये समय है, ये समय है जब हम अंदर से अपने आप को, क्योंकि हम नहीं भी करेंगे ना साफ, तो बाबा ने कहा धर्मराजपुरी में हिसाब। अब धर्मराजपुरी क्या है, हमारी हर एक्शन हर क्रिया, चाहे मन है, मन से जो विचार कर रहे हैं, मुख से जो बोल रहे हैं, कर्मों द्वारा जो कर रहे हैं, हर एक की रिकॉर्डिंग आत्मा में हो रही है। इसको बचपन में हम सुना करते थे भक्ति मार्ग में, अंदर चित्रगुप्त बैठा है जो हमारी हर एक्शन का लेखा लिखता है, और जब भगवान के पास जाते हैं वो चित्रगुप्त हमारा लेखा उसके सामने रखता है, और उसके अनुसार हमारे को सजा कहो या रिवार्ड कहो वो मिलता है। तो चित्रगुप्त माने क्या, चित्र हर एक की इमेज, गुप्त रूप से आपको पता भी नहीं चल रहा, अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होते जा रहा है। इसलिए आजकल देखेंगे आप जो ऑफिसर्स होते हैं ना, बड़े बड़े अफसर्स होते हैं, उनके साथ सेक्रेटरीज होते हैं और रिकॉर्डर साथ में रखते हैं कि कुछ भी बोला रिकॉर्ड कर लिया फिर बैठ के हम लिखेंगे। और दूसरा फायदा उसका ये होता है, अफसर बाद में अगर चूक गया कि नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला था, चालू करके रख देंगे, देखो आपने नहीं बोला था, ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अब वो नकार नहीं सकता ना। तो ऐसा रिकॉर्डर हमारे अंदर है, आत्मा के अंदर। तो वो हमारा रिकॉर्डर जो है ना, वही हमारे लिए धर्मराज है और वही एरिया हमारे लिए धर्मराजपुरी है। क्योंकि एहसास भी जो होता है, समझो मैंने गलत किया या जो भी किया और मेरे सामने अभी परेशानी आई है, तो फीलिंग कहाँ हो रही है? जो मैं कह रहा हूं कि अंदर में कितने दर्द से गुजर रहा हूं मुझे मालूम, तो अंदर ही तो धर्मराजपुरी हुई ना, वो और कहाँ हुई? धर्मराजपुरी और कहाँ हुई? और इसलिए बाबा क्या कहता है कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है। बाबा ये नहीं कहते कि मैं धर्मराज हूं, बाबा कहते धर्मराज मेरा राइट हैंड है, मतलब एक एक आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डर है वही बाबा के लिए राइट हैंड है। और राइट हैंड का मतलब क्या है? अंदर रिकॉर्डर है और बाबा ने कहा है कि उस घर में पहले सबको चलना है और वहां पर जैसे तुम साफ सुथरे आए थे वैसे ही चलोगे, वहां पे मैल नहीं चलेगी। और वहां जाने से पहले ही ये सब कुछ भुगत के, क्योंकि व्यक्ति जब संपन्न होता है ना हर प्रकार से, तो उसको फीलिंग नहीं आती है वो गलत कुछ कर भी रहा होता है तो भी। समझो मैं हर प्रकार से संपन्न हूं और फलाने व्यक्ति को थोड़ी किसी प्रकार की उतनी संपन्नता नहीं है, तो मैं बात बात में क्या करती हूँ? व्यंग कसती रहती हूँ और मुझे ये लगता नहीं कि मैं व्यंग कस रही हूँ, कोई गलत काम कर रही हूँ, और अचानक मेरे दिन पलटते हैं, अचानक मेरे दिन पलटते हैं और वो मेरी संपन्नता के दिन मुझे फिर याद आते कहाँ चले गए वो मेरे दिन, और अंदर ही अंदर बात करती हूँ ऐसा क्या मैंने कर डाला। फिर वो जो सब कर रही थी ना, लोग मुझे बोलते थे ऐसा मत बोलो, वो सब मुझे याद आता है अंदर में, फलाना मुझे बोलता था तुम ऐसे करती हो, नहीं ठीक नहीं अच्छा वो। फिर मैं अंदर ही अंदर रियलाइज करती हूँ हे भगवान मुझे इससे छुड़ा दे, आगे मैं कभी नहीं करूँगी। ऐसा होता है। तो ये जो रियलाइजेशन करते हैं ना, ये रियलाइजेशन मेरी मैल को धो देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं धर्मराजपुरी में तुमको भुगत के चलना पड़ेगा। माना बाबा कहते हैं सारी एक मिनट में सारी सीन आपके सामने घूमेगी, एक मिनट में ऐसा लगेगा जैसे सालों से मैं भुगत रहा हूं। लेकिन अगर वो एक लोग फिर कई बार बोलते हैं बच्चे ठीक है ना एक मिनट में भोग लेंगे ना सब कुछ, लेकिन बात आती है जो एक मिनट में जितना ज्यादा भुगतेंगे हम, माना लास्ट अनुभूति कौन सी लेके जाएंगे, लास्ट अनुभूति कौन सी लेके जाएंगे वो सोचो। हम अंतमति सो गति, और इसीलिए बाबा पूछता है बच्चे कब आना है तुमको, सत्युग में आना है त्रेता में आना है? क्योंकि उस अनुभूति तक, उस लेवल तक जब प्यूरिटी कम होगी, सत्युग में आते ही फिर प्यूरिटी लेवल कम होगा ना, तो तुम जितनी प्यूरिटी अपनी मेहनत से तुमने रियलाइज करके जो किया वो गिनती में आएगा और उस हिसाब से तुम सत्युग के पहले जन्म में या दूसरे या तीसरे या चौथे में आएंगे। तो ये भी नहीं कि चलो उस समय भुगत लेंगे ना क्या फर्क पड़ता है, एक मिनट में सब भुगत लेंगे, लेकिन अंतमति सो गति। इसलिए धारणाओं को हम श्रेष्ठ रखें, कर्म श्रेष्ठ, तो अंतमति सो गति भी बहुत अच्छी होगी। जितने अच्छे लक्ष्य से बाबा हमको पढ़ा रहा है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, हर बच्चा राज्य का अधिकारी है, तो हम वो राज्य स्वराज्य हमें जो देने आया है लक्ष्मी नारायण का पद, हम उसके लायक अपने आप को बनाएं। ओम शांति।